कॉल कीजिए तनवीर सुल्तान 416-566-3830 416-566-3830।
तो कहानियां पानी शुरू करते हैं जनाब। यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में जो गवर्नमेंट हाउस लीडर हैं मार्क हॉलैंड, इन्होंने कहा जी कि अब हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो ये एमपीज और बाकी के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जिनको कहा था कि जी हाउस ऑफ कॉमन्स में आपने बगैर वैक्सीनेशन के नहीं आना, तो इसके ऊपर अब सरों के साथ डिस्कशन शुरू हो गई हैं कि अब भाई आपने हर जगह बाकी जो रिलैक्स कर दिए हैं सारे ये मैंडेट्स जो हैं वैक्सीनेशन के, तो यहां पे आपने क्यों रखे हुए हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं जी अभी तक ये पूरी डिस्कशन पूरी नहीं हुई, ये बीच में हो रही है और इसके ऊपर फर्दर कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। आपको पता है कि ये जो है वैक्सीन मैंडेट, ये पहले दिन से ही ये जो 44th पार्लियामेंट बनी थी नवंबर 2021 में, उससे पहले दिन से ही ये वहां पे थी। हालांकि स्पीकर जो थे उन्होंने कहा था कि ये जो है इसने ओवर स्टेप किया है गवर्नमेंट ने जो आपकी जो फ्रीडम्स है उसके लिए जब इसको इम्पोज किया है। लेकिन बहरहाल जी सबको कहा गया था वैक्सीनेशन है तो आना है, वैक्सीनेशन नहीं है तो नहीं आना। तो अब वो कह रहे हैं जी मार्क हॉलैंड साहब के इसके ऊपर डिस्कशन होगी तो फिर हम आगे फर्दर इसको लेके जाएंगे। कंजर्वेटिव पार्टी की जो इंटरिम लीडर हैं कैंडिस बर्गन, उनका आज कहना है, उन्होंने कह रहे पहले तो उन्होंने बड़ा हिट किया ट्रूडो साहब को और फिर उन्होंने उनका कहना है जी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बड़ी ऊपर चली गई है और ये जो आपका इमरजेंसीज एक्ट था ये जो आपने यूज किया था गवर्नमेंट ने ये ठीक नहीं था और फिर आप बड़ी रिलक्टेंस शो कर रहे हैं कोविड 19 के मैंडेट्स को लिफ्ट करने के लिए, तो आपके पास जो है कोई तरीके नहीं है गवर्नमेंट को संभालने के लिए और जो है ये जो है आप कॉन्स्टेंटली आप स्ट्रगल कर रहे हैं चीजों के साथ, ट्रेवल जो रिस्ट्रिक्शंस आपने डाली हैं उससे लंबी लंबी लाइनें हैं, उससे प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, तो आप इन्होंने एक्यूज किया लिबरल पार्टी को कि यू आर प्लेइंग विद पॉलिटिक्स और आप कनेडियंस जो हैं उनको दूर 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 अपनी पॉलिसीज की वजह से करना शुरू करते हैं। अच्छा मैं बाजी को पूछना चाहती हूँ, बाजी अगर रिस्ट्रिक्शंस उठा लेते कोविड फैल जाता फिर तो उसी कहना था जी आपने उठा लिए रिस्ट्रिक्शन उठा लिए आपने इतनी जल्दी, तो ये आपकी वजह से ये फैल गया तो पाया ना उन्होंने फिर बेचारा ट्रूडो जनती है कितने कितने जाके मंजी डाये हैं भाई, व्हाट इज दिस है। तो बहरहाल जी ये ऐसे उन्होंने आज बहुत सारे जो है एलिगेशन लगाए, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो है खराब किस्म की लेगेसी है ट्रूडो साहब जो तुम छोड़ के जा रहे हो। ये कैंडिस बर्गर ने कहा मैंने नहीं कहा ट्रूडो साहब आप बड़े हैंडसम हो, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती।
हाँ जी हमने कह रही है,
अल्लाह की बनाई हुई चीज है।
हाँ जी हाँ जी,
अल्लाह की चीज बनाई हुई को हम सिर्फ सुभान अल्लाह बोलते हैं।
हाँ जी,
उसके खिलाफ नहीं हो सकते हम। ठीक है जी। अच्छा जी, आप एक 18 पेज की एक रिपोर्ट आई है एंड दिस रिपोर्ट ना हो जी ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। अच्छा जी 18 पेज की एक रिपोर्ट आई है बाय ऑस्टिन कुलन और ये इन्होंने कहा है कि ये जो आपका बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया है, उन्होंने कहा जी ये जो लॉटरियां आप चला रहे हैं ना वहां पे बीसी के अंदर ब्रिटिश कोलंबिया में, उसमें बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये सारा पैसा कैसीनोज जो हैं बीसी के उससे होके जा रहा है। आज असल में ये हुआ था कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी और उस इंक्वायरी कमीशन की जो है बात सुनी जा रही थी और वो कह रहे हैं जी कि 133 डेज जो है इसके ऊपर चल रहा था, हियरिंग चल रही थी, ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी इनटू मनी लॉन्ड्रिंग इन बीसी 199 इसके ऊपर जो है विटनेसेस लेकर आए थे। वो कह रहे हैं कि सिर्फ इन 2014 अलोन ये जो कैसीनोज हैं दे एक्सेप्टेड $1.2 बिलियन और वो कहते हैं कि दिस वॉज हैपनिंग राइट अंडर द नोज ऑफ द अथॉरिटीज और ये जो है कोई 10,000 के करीब जो है ट्रांजैक्शंस की और इसके अंदर जो 1881 जो इंडिविजुअल्स थे वो कैश बाय इन्स कर रहे थे और वो कहते हैं जी कि हर तरीके से पैसा आ रहा था इलेक्ट्रिक इलास्टिक बैंड्स में $20-$20 के बिल बंद होके आते थे, शॉपिंग बैग्स में, स्नैक बैग्स में, सूट केसेस में, जिम बैग्स में, कार्डबोर्ड बॉक्सेस में। तो वो कह रहे हैं इसको आपने रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो पहन पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा आ रहा है तो वो कह रहे हैं हम दो है सानू कितने चाहिए
$1 मिलियन
किसके लिए,
कैनेडियन
मोड गेज,
कैनेडियन
दैट ऑल्सो या नॉट अमेरिकन है जी मोड गेज। अच्छा जी तो ये देखो जरा इतने 1.2 बिलियन पाया ना, बिलियन
एक थैला
सिर्फ एक थैले की बात है अच्छा हमारी तो किस्मत जो है ना एक सुपारी, और हमारी तो किस्मत माजद भाई इतनी कोई ठंडी है ना, वो जी सारी जिंदगी अमिताभ बच्चन की फिल्में देखते रहे जब बच्चे थे हैं, और सारी जिंदगी उसकी फिल्मों में ये होता था एक बड़ा सारा वो स्मगलर होता था और उसने बड़ा सारा एक सूटकेस पैसों से भरा हुआ होता था और वो किसी गरीब के घर में ऐसे फेंक के चला जाता था और पुलिस से बच जाता था, फिर वापस आता था, फिर वो अपना बैग, वो जो गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी बहुत ईमानदार है होता था, वो उसका बैग दे देता था, वो खुश होकर उसमें से उसको पैसे, यानी सड़ी किस्मत में ऐसा भी कोई नहीं,
ऐसा भी कोई नहीं,
कोई यहाँ से कॉन्विक्ट जो है वो मिलियन डॉलर्स का बैग लेके ना भाग रहा है ना हमारे घर में फेंक रहा है,
बड़ी माड़ी,
व्हाट इज दिस किस्मत,
माड़ी किस्मत,
मारी किस्मत, माड़ी किस्मत है, व्हाट इज दिस, ये मुझे मजा नहीं आ रहा
नहीं
है ना, तो ये भी नहीं हो रहा हमारे साथ, तो जी ये जनाब ये इधर देखो जरा ये कितने जी वो चल रहे हैं। अच्छा जी लेजर पोल एक हुआ है और लेजर पोल के अंदर उन्होंने पूछा है जो लिबरल, अच्छा इसके अंदर दो उन्होंने किए हैं, एक तो जो लिबरल और एनडीपी के जो वोटर्स हैं उनसे पूछा है कि ये जो सारे लोग हैं कंजर्वेटिव पार्टी की फेडरल रेस में उसमें से तुम लोगों को अच्छा कौन लग रहा है, तो लिबरल्स और एनडीपी कहते हैं कि हमको जॉन शेरे और पैट्रिक ब्राउन अच्छे लग रहे हैं। ये लेजर वालों ने 1528 कैनेडियन एडल्ट्स का लास्ट वीकेंड पे लिया था सर्वे, और ये इन्होंने कहा है कि जी सितंबर 10 को जब ये अपने लीडर का अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको कौन उसमें से अच्छा लग रहा है, तो ये इनके पास आए थे 58% जो थे उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है किसको, और या कुछ ने कहा जी कि हम तो किसी को भी पिक नहीं करेंगे। अच्छा कंजर्वेटिव वोटर्स जो हैं उनसे जब इन्होंने यही क्वेश्चन किया कि तुमको क्या लग रहा है कि कौन तुम्हारा लीडर बन के आएगा, 23% ने कहा हमें नहीं पता, 8% ने कहा कि हम तो किसी को भी इनमें से सिलेक्ट नहीं करेंगे, 44% ने कहा कि पीएफ पॉलिवर जो हैं वो शायद आगे आ सकते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम ओटावा एरिया के ये एक तो एमपी भी हैं, अच्छा और ये काफी क्रिटिसाइज करते रहे हैं इन सारों को, बैंक ऑफ कनाडा की इन्फ्लेशन को और जो गवर्नमेंट है उसकी गलत पॉलिसियों को, कुछ ने कहा जी शेरे जो हैं वो क्यूबेक्स के एक्स प्रीमियर भी हैं, तो ये बगर ही वॉज द डिस्टेंट सेकेंड एट 14%। इसी तरह 25% जो थे लिबरल्स और जो एनडीपी थे उन्होंने भी ये फील किया कि शायद इनमें से शायद शेरे शायद बेटर है दूसरे से, यानी कि पैट्रिक ब्राउन से भी
बेटर नहीं, वो देखते हैं कि मेरा अपनी राय है कि वो ये देख रहे हैं जो कंजर्वेटिव के वोटर्स को छोड़ दें आप, एनडीपी एंड लिबरल के वोटर्स जो हैं वो देखते हैं कि भाई या तो ये दूसरे तो दो हैं, पॉलिवर जो है वो बड़ा टफ कंपटीशन देगा
यस यस
ओके,
लेजली लुइस और बाबर रोमन जो है वो तो किसी खाते में नहीं वो डालते हैं, तो ये जो है जॉन शेरे और पैट्रिक ब्राउन जो है इनको जरा टेम कर सकते हैं उनको लगता है क्योंकि वो बड़ा फायर बैंड है ना, तो वो कहते हैं कि इसको नहीं कर सकेंगे, तो ये शायद इसलिए था। तो जी 11% ने कहा जी कि हम शायद हम सोचते हैं कि शायद पैट्रिक ब्राउन जो है उसको आपको चूज करना चाहिए, बहरहाल जी अब ये देखेंगे क्या होता है। अच्छा जी आज एक और बहुत ही खतरे में नाक रिपोर्ट आई है, दिस इज अबाउट द ब्लैक्स, द ब्लैक कम्युनिटी जो है यहां पे उसके ऊपर है, और टोरंटो पुलिस चीफ जो है जेम्स रेमर उन्होंने ये जो आई है ये रिपोर्ट तो उसके ऊपर बड़े अफसोस का इजहार किया है। वो रिपोर्ट क्या है कि उन्होंने कहा जी कि 20-60% जो है पीपल ऑफ कलर ये ज्यादा पुलिस की वायलेंस फेस करते हैं जब इनका वास्ता जो है टोरंटो पुलिस से पड़ता है, और जब पड़ा था इन 2020 और उससे पहले भी और इस तरह। अच्छा इसमें उन्होंने कहा जी कि ब्लैक रेजिडेंट्स जो थे 230%
Amazing.
You know what? 230%. Yes.
230%.
हाँ वो कहते हैं जी कि ये जो 230% क्या होता है कि पुलिस वाला जब ब्लैक किसी कम्युनिटी के बंदे को देखता है तो एकदम बंदूक तान लेता है,
बंदूक
तान लेता है,
कंपेयर टू उसके पास जो है जब काला आदमी
होती भी नहीं है, होती भी नहीं है, गन होती भी नहीं है उसके पास। ये जी इन्होंने रिव्यू किया था 86,500 इंटरेक्शंस जो हुए थे टोरंटो पुलिस के साथ, उसके बाद ये सारी रिपोर्ट आई थी। तो आज टोरंटो पुलिस चीफ जेम्स रेमर ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूं, मैं आपको अपोलोजाइज करता हूं, और हमको इसके अंदर जो है वो रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और वो कहते हैं जी जेम्स रेमर कहते हैं कि ये हमारे डीप रूटेड जो है ये कंसर्न जो है ये आज सामने आए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, और वो कहते हैं हमको इनको जो है बेटर करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में यह भी आया कि 39 टाइम्स टोरंटो पुलिस जो है उसने फोर्स यूज की ब्लैक के अगेंस्ट 2020 में, और इसके अलावा जब ये लॉ एनफोर्समेंट के साथ इनका होता है तो 220% टाइम्स ज्यादा ये जो है ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है वायलेंस विद एंड अल्टरकेशन विद पुलिस एंड ऑल दोस थिंग्स।
और इन्होंने जो नाम दिया था इसको जो व्हाट जेम्स रेमर कॉल्ड चीफ जेम्स रेमर कॉल्ड दिस सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज अ वेरी स्ट्रांग वर्ड.
जी जी. तो वो कहते हैं कि ये इस इन इनजस्टिसेस को और इन डिस्क्रिमिनेशंस को हमको खत्म करने की जरूरत है. ये हमारी इंडिजिनस रिकंसिलिएशन ग्रुप की सीईओ हैं रोज लिमे. और रोज लिमे जो हैं उन्होंने आज कहा है कि ये जो जब से ये असल में 200 बच्चों की जब ये जो फॉर्मर रेजिडेंशियल स्कूल से कैमलूप्स में उनकी ग्रेव्स मिली थी तो रिमेन्स मिले थे बल्कि तो उन उसके बाद जो है ये डिस्कशन हो गई थी कि भाई क्या इन लोगों के ऊपर जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर क्रिमिनल जस्टिस काम करेगी या नहीं. तो आज इन्होंने रोज लिमेरी ने लिमे ने कहा है कि इन लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं आप लोगों को नजर आ रही कि इन लोगों के अगेंस्ट जो कि इन चीजों में शामिल थे उनको उनके खिलाफ करनी चाहिए. वो कहते हैं जी कि ये जो रिपोर्ट आई थी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की उसके अंदर प्रॉपरली बताया गया था कि कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और बहुत से लोग उस वक्त के जो उन्होंने के ये प्रपोज किया था कि इस तरह के रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाए और लोगों के बच्चे उठाए जाए इंडिजिनस लोगों के तो वो अभी भी जिंदा हैं. तो आप क्यों नहीं उनको जो है ये प्रोसिक्यूट कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं आप उनको सजाएं क्यों नहीं दे रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये क्राइम्स जो हैं ये तो मतलब कब से ही आपके सामने आ रहे हैं. अच्छा इसी के अंदर जो इंडिजिनस ग्रुप है इसके अंदर एक और ग्रुप है वो कहते हैं जी कि ये चीजें मे बी इधर कैनेडा में गवर्नमेंट लेवल पे करने की जरूरत नहीं है इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की जरूरत है क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है. लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो इस तरह के केसेस को डील नहीं करती है.
तो दे आर डीलिंग विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो क्राइम्स जिन्होंने किए.
हाँ तो वो वॉर के क्राइम्स थे ना वो
अगेंस्ट ह्यूमैनिटी.
जी लेकिन वो कहते हैं कि ये आपका इंटरनल पॉलिसी थी ये पॉलिसी बेस्ड है इसके अंदर जो है ये नहीं करते हैं. बहरहाल वो उस ग्रुप ने कहा है कि अगर नहीं करते हैं तो उनको बोलो कि वो करें उनके पास लेके जाओ ये केसेस जो है अब अपनी गवर्नमेंट को कहने के बजाय. आज अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है जी और इसके ऊपर उन्होंने ये जो रिपोर्ट निकाली है दिस इज बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉज जिसके के अंदर उन्होंने पूछा है जैसे कि कल हमने आपको बताया था ना कि यूके की गवर्नमेंट बहुत सारे रुवांडंस जो है उनको वापस भेज रही है तो इसकी एक रिपोर्ट इन्होंने निकाली है कि यूके का जो होम डिपार्टमेंट है या होम मिनिस्ट्री है उसने कितने लोगों को फोर्स तरीके से जो है भेजा है वापस डिपोर्ट किया है. तो इसके अंदर इन्होंने फाइंड आउट किया है कि बहुत सारे लोग वैसे तो ये कह रही है गवर्नमेंट के 77 लोगों को हमने डिपोर्ट किया है लेकिन जो रिपोर्ट है इससे भी काफी ज्यादा है ना यानी कि नंबर जो है वो इससे भी काफी ज्यादा है. फिजा कुरैशी जो कि सीईओ है माइग्रेंट्स राइट्स नेटवर्क की लंदन बेस्ड चैरिटी है वो कहते हैं जी फॉर द फर्स्ट टाइम ये नहीं हुआ है ये टाइम एंड अगेन हम होम मिनिस्ट्री जो थी उसको कहते थे कि आपकी जो पॉलिसीज और आप ये जो लोगों को यूके बॉर्डर से डिपोर्ट कर रहे हो ये आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो हैं ये यूके का लॉ ब्रेक
इलीगल
है इलीगल है ये बिल्कुल गलत है आप इस तरह से लोगों को कर नहीं सकते. और वो कहते हैं ये बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट है जो कि आज सामने आई है. तो आज यूके की गवर्नमेंट को बहुत जो है हिट किया गया है कि कैसे आप कह रहे हो कि हमने 77 लोगों को गलत तरीके से जो है आप ये डिपोर्ट ये तो कह रहे हैं गलत तरीके से डिपोर्ट किया और इसको जो है रोकने की जरूरत है और होम ऑफिस जो है वो उसका ये जो डिसीजन है इसको खत्म करने की भी जरूरत है. और भी आज यूके की मुश्किलें बढ़ी जब यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम यूके को सू कर रहे हैं. अच्छा जी वो सू क्यों कर रहे हैं यूके को क्योंकि यूके का जब ब्रेक्सिट हुआ था तो उन्होंने इनके साथ एक डील बनाई थी यूरोपियन यूनियन के साथ और उन्होंने कहा था जी कि ये जो हमारा जो गुड्स जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर जो है वो आती हैं उसके ऊपर जो है कस्टम्स चेक्स होने चाहिए तो वो जो होते हैं सॉरी उनको रिमूव करना चाहिए. अच्छा अब ये कह रहे हैं कि ये इसको चेक्स को फिर से हम इम्पोज करेंगे. अब जबकि इन्होंने कहा कि ये चेक्स हम फिर से इम्पोज करेंगे क्योंकि पहले तो ये बड़े मजे ले रहे थे ईयू में फ्री ट्रेड जोन के मजे उठा रहे थे तो अब अगर ये ऐसा करेंगे तो नॉर्दर्न आयरलैंड और बाकी के यूरोप को भी जो ट्रेड डील है जो ट्रेड होती है उसको बहुत इफेक्ट करेगी. ईयू के जो कॉमर्स जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मार्कोस सेफकोविट उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रसल्स में कहा है कि ये इलीगल है क्योंकि आपका जो ये डील हुई थी ये ब्रेक्सिट पे हुई थी और आपने ये डील यूरोपियन यूनियन के साथ की थी कि आप इस तरह के चेक्स और बैलेंसेस जो है उनको आप नहीं करेंगे रिमूव, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी इनको जो है वो करने की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आप जो है अब हम आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। तो यूके जो है लेकिन बहरहाल यूरोपियन यूनियन का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड चाइना, तो वो कह रहे हैं जी कि अब एक्शन तो हम लेना चाहते हैं तो अब हम लेकिन अब ऐसे कर नहीं सकते हम, तो देखेंगे आपके क्या होता है, क्योंकि जाहिर है कि ट्रेड फिर बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है। अच्छा जी आज एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वो इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरह से बनती है कि एक साउथबीज वाले जो है आपको पता है बहुत बड़ा ऑक्शन हाउस है साउथबीज वाले भी, साउथबीज लंदन ने कहा है कि एक बहुत ही रेयर किस्म का जो फ्रांसिस बेकन ने एक पोर्ट्रेट बनाया था अपने दोस्त का उसको हम ऑक्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि इसी महीने में हम करेंगे। और ये बड़े आपको पता है ये बहुत बड़े सेलिब्रेटेड पेंटर थे ये इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन, और इन्होंने ये पोर्ट्रेट बनाया है अपने दोस्त लूसियन फ्रॉयड, नॉट सिगमंड फ्रॉयड, दिस इज लूसियन फ्रॉयड, वो भी बहुत बड़े पेंटर थे इंग्लैंड के उनके। अच्छा ये जो एक तो दो चीजें अब इसके अंदर इसमें ये जो बेचा जा रहा है जिसका नाम इसका इस पेंटिंग का नाम है स्टडी फॉर पोर्ट्रेट ऑफ लूसियन फ्रॉयड जो कि पेंट की गई थी 1964 में। अच्छा इसमें अब दो चीजें, एक तो ये कि इसकी कीमत बेतहाशा जो है वो लगाई गई है, इसका सोचा जा रहा है कि ये देखे जरा कितनी भाई छोटी सी पेंटिंग है ये, और ये 42 मिलियन कहा जा रहा है कि उस पे ये बिकेगी। अच्छा ये जिस वक्त फ्रांसिस बेकम ने बनाई थी ना तो ये तकरीबन बनाई थी तीन इसने डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स इसी के ऊपर बनाई थी सेम स्टोरी के ऊपर, एक जो है वो इजराइल के म्यूजियम में है, एक जो है वो प्राइवेट कलेक्शन में है और एक जो है ये अब उसको कर रहे हैं। अच्छा ये स्टोरी क्यों इतनी अमेजिंग है, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये फ्रांसिस बेकन भी और लूसियन फ्रॉयड भी, इनको पिलर समझा जाता था ऑफ यूके कंटेम्पररी आर्ट और टिल अबाउट 1982 इनके बीच में बड़ा प्यार मोहब्बत और दोस्ती थी, फिर उसके बाद जब एक से ज्यादा दूसरे की तारीफ होने लगी तो दूसरे को जलन होने लगी तो फिर इनके बीच में रिवलरी शुरू हो गई, तो वो जो रिवलरी जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई दैट दे एब्सोल्युटली फेल आउट, कोई फ्रेंड्स नहीं रही है। तो इसलिए इस तस्वीर की सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये तस्वीर जब दोनों के बीच में दोस्ती थी ना तो तब ये बनाई गई थी, तो वो इसलिए कहते हैं कि ये दिस इज अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप लॉस्ट।
वाओ,
तो इसलिए जो इसकी इतनी हाई प्राइस है। तो बहरहाल जी ये बड़ी आज इसके बारे में बात की जा रही है और अब देखेंगे क्या, क्योंकि अगर आपने कोई ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स अगर आप फॉलो करते थे 1980s के दरमियान तो आपको पता होगा कि बहुत ओपनली फ्रांसिस बेकन जो है वो ये इसके लूसियन जो है इसके खिलाफ बातें करता होता था और वो ब्रिटिश टैब्लॉइड्स जो होते थे पूरे पूरे भरे हुए, हाँ वो पूरे वो मजे लेते थे वो पूरे पूरे भरे हुए होते थे कि इसने उसके बारे में क्या कहा वो इसके बारे में क्या कह रहा है। तो ये आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर किसी दिन करेंगे हम। अच्छा जनाब आज चाइनीज प्रेसिडेंट शी जो है जो कि माजी भाई के बड़े फेवरेट हैं और दूसरे मेरे बड़े फेवरेट हैं पुतिन साहब, ठीक है ना माजी भाई, बांट के मिल बांट के हम काम करते हैं ना, एक आपका फेवरेट एक मेरा फेवरेट है जी, इनके बीच में जी आज टेलीफोन कॉल हुई है और आज फिर प्रेसिडेंट शी ने कहा इनको पुतिन साहब को कि भाई ये जो यूक्रेन के साथ क्राइसिस है इसको आप जरा प्यार से आप निभाने की कोशिश करें, लेकिन इसके साथ ही चाइना ने जैसे आप मेरे पीछे खड़े हैं ना, चाइना ने रशिया को कहा पुतिन साहब को कहा कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, ठीक है तो तुम्हारी हम ना तो ट्रेड खत्म खराब होने देंगे ना कुछ, हम जो कुछ भी हमारे बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो ऐसे ही चलती रहेगी, बल्कि और वाइड रेंजिंग इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है उसके ऊपर जो आज डायलॉग किया बातें किया, उन्होंने कहा जी कि हमको बहुत जरूरी है हम दो कंट्रीज को यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म करने के लिए, और वो कहते हैं जी कि ये जो है हर उस एरिया में, बल्कि आज तो इन्होंने ये तक कहा है कि हमारे कोऑपरेशन के बीच में कोई भी फॉरबिडन एरिया नहीं है। व्हाट इज दिस, समझ गए
अब बस अकल मंद को इशारा
काफी, इशारा काफी है ना, हाँ बस ये हमने बोलना नहीं फैमिली चैनल है मगर ये बड़ी खतरे में नाक बात है अगर आपको समझ आ गई बगैर बोले, अगर आपको पता चल रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा तो अभी हमने आपको वैसे बताया था कि अभी फ्राइडे को जब हम खबरें सुना रहे थे कि हमने आपको बताया था कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है उसकी भी ओपनिंग हुई है टू फैसिलिटेट ट्रेड फ्रॉम रशिया टू चाइना, तो वो कहते हैं जी अब इन चीजों को जो है हम अब फर्दर आगे लेकर जाएंगे और ये वेस्टर्न सैंक्शंस जो है ये इसका कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि दोनों को फायदा है। चाइना के ऊपर जो है वो उन्होंने चीजें लेनी बंद कर दी हैं जिसके वजह से आपको पता है सप्लाई चेन के बहुत मसले पैदा हो गए हैं, रशिया पे सैंक्शंस लगा दी हैं, तो अब ये दोनों जो हैं आपस में ट्रेड कर सकते हैं और जो जिसको जो चाहिए वो एक दूसरे से ले सकते हैं। अल जजीरा की एक और खबर है जी, एंड दिस ऑल्सो इज अ वेरी वेरी डिप्रेसिंग न्यूज। ये अल जजीरा ने वंस अगेन ये रिपोर्ट पब्लिश की है, सेव द चिल्ड्रन, आपको पता ही एक चैरिटी है इंग्लैंड की, उससे, और इनका जो टाइटल था इनकी रिपोर्ट का, सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट का, ट्रैप्ड, इसके अंदर जो है अल जजीरा ने यह बताने की कोशिश की है कि पिछले 15 साल में 4 out of 5 किड्स इन गाजा जो हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, सैडनेस एंड फियर, इसलिए कि इन्होंने वैसे इंटरव्यू लिए थे 488 चिल्ड्रन के एंड अबाउट 168 पेरेंट्स एंड फॉरगिवर्स। वो कहते हैं जी कॉन्स्टेंटली, क्योंकि यहां पे ब्लॉकेड्स चल रहे हैं, जून 2007 से बच्चों को फ्रीली घूमने फिरने नहीं दिया जा रहा, फिर वो अभी खेल रहे होते हैं स्ट्रीट पे तो उनके अपने घर में या साथ वाले घर में एक बॉम्ब या मिसल आके गिर जाता है, लोग मर जाते हैं, और वो जो है अब अपने स्कूल्स नहीं जा सकते, दोस्तों से नहीं मिल सकते कभी बहुत दफा। तो ये पूरी जो आज रिपोर्ट आई है, वो उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस जो है बढ़ गया है, बच्चे जो हैं 84% जो बच्चे हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने 84% ने कहा जी हम बहुत फियरफुल हैं जो कंडीशन है हमारे कंट्री में, 80% ने कहा वी आर वेरी नर्वस अबाउट द सिचुएशन दैट इज इन आवर कंट्री, 55% ने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस आ गया है, और 78% ने कहा कि हम बहुत ज्यादा ग्रीव जो है कर रहे हैं, जो कि हमारे प्यारे, ये देखें ये बड़ा खूबसूरत ग्राफिक जो है ये बनाया है इन्होंने अल जजीरा वालों ने, वो लोग जो हमारा देख रहे हैं, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू अल जजीरा, उनका ये आज हमने ग्राफिक लिया है, और ये उसमें ये सारी इन्होंने जो रिपोर्ट है आज, और ये सारे बच्चे आप इनकी एज देखें, 15 साल 8 साल 10 साल 12 साल, इन सबसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि हमारी कंडीशन बहुत ही डिप्रेसिंग है यहां पे और वी आर वेरी सैड। तो वो कह रहे हैं जी कि ये बच्चों के अंदर ये चीजें सैडनेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है आने वाले दिनों में क्रिएट करेगी। आज जनाब जो यूरोपियन यूनियन है उसने इसराइल और इजिप्ट के साथ एक जो है वो डील इन तीनों ने साइन की है। यूरोपियन यूनियन तो आपको पता है 27 ब्लॉक का वो है, ब्लॉक है, और फिर इसराइल और इजिप्ट इनके साथ की है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब वो रशियन एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अब कभी यूएई के पास जा रहे हैं कभी कतर, तो आज ये लोग इजिप्ट और इसराइल के पास आए हुए हैं यूरोपियन यूनियन वाले। तो यहां पर इनकी जो यूरोपियन कमिश्नर कमीशन की चीफ है उर्सुला वॉन डर लेयन, वो भी यहां पे थी, और उन्होंने कहा जी कि हमको अपनी रशियन एनर्जी के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम करना पड़ेगा, और फॉर द फर्स्ट टाइम ये इतनी बड़ी इन्होंने जो है वो की है, डील की है स्पेशली इसराइल के साथ, और उन्होंने कहा जी कि हमारे यूरोप के जो एनर्जी जो नीड्स हैं वो हम आपके साथ करेंगे। हालांकि आपको पता ही है कि ईयू अबाउट 40% गैस जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है, तो अब ये डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, इजिप्ट है, इसराइल है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इनसे अब लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले की आज ये एक और भी कोशिश थी। उर्सुला वॉन डर लेयन ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इन लोगों के साथ हम ये जो डील कर रहे हैं ये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर, तो और हमें एनर्जी सिक्योरिटी ही चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं यूरोप में वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई हो सकता है कि 2 साल और चले, हो सकता है, तो इसलिए वो अभी से कर रहे हैं। अच्छा जी, बाइडन साहब ने कहा है जी कि असी थे लड़ाई वैसे भी नहीं रोकनी है जी, तो हो रहा है, उन्होंने अनाउंस कर देता है $1 billion ऑफ मिलिट्री एड टू यूक्रेन। इसके अंदर अब क्या शामिल है, इसके अंदर जी एंटी शिप मिसल लॉन्चर्स, हवाइट्जर्स, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम्स, और इसके अलावा उन्होंने कहा जी $225 million की हम ह्यूमैनिटेरियन एड देंगे, विच विल प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सप्लाईज, फूड, हेल्थ केयर, शेल्टर, मनी फॉर फैमिलीज टू बाय एसेंशियल गुड्स। वो कह रहे हैं जी रशिया अपना जो है वो इन्फ्लुएंस ईस्ट डॉनबस रीजन के अंदर कर रहा है, तो इनको चाहिए है, ये और चीजें चाहिए हैं फाइट करने के लिए, और ये उन्होंने उस वक्त कहा है कि जिस वक्त यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं वो ब्रसल्स में थे, लॉयड ऑस्टिन साहब, और इन्होंने आज ये जो 45 कंट्रीज थी वहां पे जमा हुई हुई उनको इन्होंने आज कहा है कि हमको यूक्रेन की और ज्यादा हेल्प करने की जरूरत है, और वो कहते हैं आप अपना दिल, यूरोपियंस को कह रहे हैं आप अपना दिल छोटा मत करो, आप अपना दिल बड़ा करो और वेपन्स दो यूक्रेन को, है जी, हाँ जी, तो क्योंकि हमको रशिया को रोकना है, तो वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कमिटमेंट पे रहें, और क्योंकि इनको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, इनको अपनी टेरिटरी बचानी है, इनको अपने सिटीजन्स बचाने हैं, और इनको हम डिफेंड करने के लिए सब कुछ देंगे, तो पायन फिर तुझी कश्मीर में भी कुछ देखो उधर नहीं देखना तुझे, अच्छा अच्छा चलो ना देखो कोई गल नहीं। अच्छा जी, इस मीटिंग में जब ये इन्होंने बात की तो यहां पे नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल थे जेंस स्टॉल्टनबर्ग, उन्होंने भी कहा है कि हमको यूक्रेन को हैवी मशीनरी जो है वो देते जाने चाहिए और स्पेशली जो है लॉन्ग रेंज मिसल सिस्टम देना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है कि नेटो के कंट्रीज जो हैं वो शायद, या उनमें से कुछ लोग शायद इस बात के ऊपर हैं कि हम जरा थोड़ा सा वो शाये हो रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये पैकेजेस जो हैं ये इनको कंटिन्यू रखने हैं। और उन्होंने नेटो के मेंबर्स को भी कहा है कि भाई आपके साथ और फर्दर हम बात करेंगे लेटर दिस मंथ। तो अभी तो ईयू को उन्होंने कहा कि नहीं घबराना नहीं है आपने, हैं जी देंदे जाओ वेपन, देंदे जाओ, देंदे जाओ। अच्छा जनाब, द वायर की आज एक स्टोरी है और ये वायर की स्टोरी बहुत ही, मैनू तो समझ नहीं आ रहा कि इंडिया को हम कभी फॉलो करते होते थे बहुत सारी चीजों में, उनकी डेमोक्रेसी के लिए जब हम बच्चे थे, जब हम नया नया हमने जर्नलिज्म भी सीख रहे थे हम, तो हमें बड़े भी कहते थे इंडिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच देखो, इंडिया की डेमोक्रेसी देखो। तो हम पाकिस्तान में बैठ के इंडिया को बड़ा आइडलाइज करते थे कि देखो सिस्टम्स कैसे वहां पे सेट हैं और कैसे चल रहे हैं। बहरहाल जी, हूं पता नहीं की हो रहा है। द वायर की आज एक ये स्टोरी है और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन जो है उन्होंने कुछ जो इंडियन बैंक हैं, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उनकी कुछ जो चीजें हैं उसके ऊपर एतराज किया है। अच्छा जी, हुआ क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक गाइडलाइंस दी हैं जिसको कि अब बाकी के बैंक्स भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु का ग्रामा बैंक और बाकी के भी अब करने शुरू हो गए हैं हौले हौले। इन्होंने कहा जी कि अगर कोई औरत 12 वीक्स या ओवर में प्रेग्नेंट है तो फिर वो काम करने के लिए अनफिट है जब तक के उसका बच्चा नहीं हो सकता और उसका फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसका सर्टिफिकेट जो है वो लिया जाएगा 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ लेबर, और उसके बाद अगर मेडिकल में उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो ठीक आएगा तो फिर वो वापस काम पे आ सकती है बैंक में, वरना उसको फिट नहीं समझा जाएगा। इस पे तो जाहिर है ख्वातीन भड़क गई, उन्होंने कहा भाई ये तो 9वें महीने में आखिरी दिन तक भी औरत जो है वो काम कर सकती है, तो आप कैसे ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो लॉ लेकर आ रहे हैं। तो उसके ऊपर आज काफी आवाज उठी, लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है तो अब जाहिर है कि वो इन्फोर्स करेगा इस लॉ को, तो अब करेगा तो फिर अब आप देखें कि फिर वहां पे क्या होएगा, है जी। अच्छा जी, आज एक और द वायर की स्टोरी है एंड दिस इज रिटन बाय निसिम मना ठुकरन, और इसके अंदर जो इन्होंने कहा है कि जो कहने की कोशिश की है इस आर्टिकल के अंदर, उन्होंने कहा जी कि इंडिया के अंदर अब डोमिनेंट स्टाइल ये बनता जा रहा है कि जो कोई भी इंडिया को कहता है कि भाई तुम्हारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स ठीक नहीं चल रहे हैं, तुम मुसलमानों को दीवार के साथ लगा रहे हो, तो वो दूसरों के ऊपर एतराज करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि ये यूएस की ह्यूमन राइट्स एक रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि आप बहुत नॉन डेमोक्रेटिक मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस जो हैं उनको आपने चुप कराया था और कहा था कि भाई तुम अपनी तरफ देखो, जब यूएस की ये रिपोर्ट आई थी जिसमें कि कहा गया था कि इंडिया के अंदर जो है गन वायलेंस बहुत बढ़ गई है और आपके मुल्क में हेट स्पीच बहुत बढ़ गया है, हेट क्राइम बहुत बढ़ गया है खासतौर पे मुसलमानों के ऊपर, तो इंडिया ने यूएस को ये जवाब दे दिया था कि तुम्हारे अपने खुद के मुल्क में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं गन वायलेंस की और हेट स्पीचेस की, तुम अपने मुल्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, तुम इंडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करो। और खासतौर पर जो नॉन डेमोक्रेटिक मुस्लिम मेजोरिटी नेशंस थे जो जिनके के बारे में जिनको के किंगडम्स कहा जाता है, उनको तो कहा था कि बिल्कुल ही चुप करके बैठो, इंडिया के ऊपर एतराज करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो तरीका कार है ना कि जिसमें आप कहते हैं कि हम सिर्फ अल्टीमेट मोरालिटी की अथॉरिटी हैं, उसमें देयर इज अ चांस टू फॉल या फॉल्टर, तो ये बजाय इसके कि आपके मुल्क में जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है या जो वायलेंस है या जो अब ये मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, इनको ठीक करने के बजाय आप दुनिया में किस किस को चुप कराओगे, तो ये तरीका कार ठीक नहीं है, तो इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी तरह जनाब एक और स्टोरी आई है द प्रिंट की एंड दिस इज रिटन बाय प्रवीण स्वामी, और इसकी तो हेडलाइन जो है वो आपका दिल काफी हिला सकती है। प्रवीण स्वामी साहब की ये जो रिपोर्ट की हेडलाइन है ये कहती है यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ब्रूटैलिटी शोज इंडियन लॉ एनफोर्समेंट रिमेन्स ट्रू टू इट्स कॉलोनियल हेरिटेज। अगेन ये सारा जो है ये उस सिनेरियो में है कि जहां पे मुसलमानों के घर जो हैं वो बुलडोज किए जा रहे हैं और ये जो सारी जो डिमोलिशन की जो वीडियोस जो सामने आ रही हैं यूपी के अंदर, उसमें लोगों को मुसलमानों को वहां पे पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। फिर वो कहते हैं जी कि ये 1980 में मुरादाबाद के एरिए में ईद उल फितर पे जिस तरह 250 लोगों को पकड़ के मारा पीटा था, फिर ये मैस जो है वो एग्जीक्यूशंस की थी 32 लोगों की मीरठ में इन 1987, उसी तरह मुसलमानों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। फिर इनके खिलाफ जो है फेक एनकाउंटर्स तेलंगाना में बनाए गए फॉर किलिंग्स इन तमिलनाडु और इस तरह। तो वो कहते हैं जी कि एक वाकया इस पे, वो कहते हैं ये जो राइटर हैं प्रवीण साहब, उनको कहते हैं मुझे याद आ गया कि 1890 में एक औरत थी गौसिया ठाकुरानी, तो उसको इन्होंने पकड़ लिया था और बहुत पुलिस पकड़ के ले गई थी इलाहाबाद में, मारा पीटा और उसको, क्योंकि चौकीदार जो था इलाके का उसने कहा कि ये जो बच्चा एक मरा हुआ मिला है ये उसके अंदर डस्टबिन के अंदर, वो इस औरत का है और उसके इललेजिटिमेट रिलेशनशिप्स थे। तो जब वो फाइंड आउट किया मेडिकल एग्जामिनर्स ने, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो खुद 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है, तो ये न्यू बॉर्न बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। तो फिर उसको छोड़ा गया। तो वो कहते हैं जी कि ये सारी जो चीजें थी ये चलती थी कॉलोनियल ईरा के अंदर, क्योंकि उस वक्त पुलिस को बहुत ज्यादा जो है राइट्स दिए जाते थे और उनको कहा जाता था जी कि आपने रेवेन्यूज कलेक्ट करने हैं और अगर आपको मारपीट भी करनी पड़े लोगों से कोई, और या के जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो मारपीट भी आपको करनी पड़े तो आप जो है आपको इजाजत दी जाती है। तो वो कहते हैं जी कि आजकल भी ये जो कुछ भी तेलंगाना में, मिजोरम में, यूपी में और जगह तेलंगाना में ये जो सारा कुछ हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये मुझे याद करा रहा है ये कॉलोनियल जमाने की सारी चीज, कि हमारी पुलिस भी एटलीस्ट यूपी की जो है वो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स जो है उनसे बहुत ज्यादा जो है वो इम्प्रेस्ड है। और इसमें उन्होंने लॉर्ड कर्जन का भी वाकया जो है वो कोट किया, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उसी तरह पेश आ रहे हैं जैसे कि लॉर्ड कर्जन ने एक दफा पूछा था 1901 में जब ये पिशावर गए थे, NWFE में गए थे, तो वहां पे लोग जो है बहुत सड़कों पे निकले हुए थे इनके गोरों के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि इनको कैसे हम ब्रूटली हैंडल कर सकते हैं इनकी रिबेलियन को खत्म करने के लिए। तो वो कह रहे हैं, प्रवीण साहब कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि यहां पे भी हमारे मुल्क में भी ये जो है वही कॉलोनियल ईरा की जो सोच है या लॉर्ड कर्जन वगैरह की जो सोच थी उसी के ऊपर जो है ये हमारी पुलिस भी जो है वो काम कर रही है, यानी कि यूपी की पुलिस का वो कह रहे हैं। अच्छा जनाब, आज FIR जो है, FIA जो है, FIA ने आज मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइनली जो है वो फाइल किया है PMLQ के लीडर जो है मुना सिलाई के खिलाफ, जिसका के जिक्र लास्ट वीक हमने कर दिया था यहां पे। और उन्होंने कहा जी कि ये लाहौर की जो FIA उसने ये फाइल की है, उन्होंने कहा जी कि 2 साल इमरान खान के जमाने में जब ये जो थे इन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा था कि शुगर कमीशन जो है वो बिठाई जाए और पता किया जाए कि इस माफिया के अंदर कौन इन्वॉल्व है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो हम तो 2 साल से इसको जो है वो फॉलो कर रहे थे, तो मतलब है पकड़ा हमसे अब तो अब हम इसको जो है, लेकिन जाहिर है कि वो उसने चूंकि लॉयल्टी दिखाई है इमरान खान को, उसने कहा कि मैं शहबाज शरीफ के साथ, सॉरी हमजा शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, तो जाहिर है फिर आपने उसके कटे खोलने हैं, तो आपने खोल दिया तो जी ये है। अच्छा जी, PTI की गवर्नमेंट ने एक दफा से फिर से कहा है कि जी ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी थी उसके ऊपर एक कमीशन बिठाने की जरूरत है, और ये उन्होंने उस सिनेरियो में कहा है कि जब DGISPR जो है जनरल बाबर इफ्तखार, उन्होंने कहा था कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, PTI की गवर्नमेंट ऐसे ही बोल रही है। तो आज कल रात को इनफैक्ट जो है असद उमर साहब और श्री मजारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि हमने ये लेटर, ये सारी चीजें इनको दिखाई थी, और फिर एक लेटर लिखा गया था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट इलवी हैं 30 अप्रैल को, और उनको कहा गया था कि भई आप ये ऐसे बिट्रेयल और हेल्पलेसनेस ना शो करें, हमारे मुल्क में एक फॉरन जो है वो इंटरफेरेंस हुई है, इसके ऊपर आप एक्शन लें। तो उन्होंने कहा जी कि, और उसमें साफ साफ असद उमर साहब ने कहा कि उस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर इमरान खान को आपने ना हटाया तो आपको बहुत ज्यादा सख्त आपको जो है चीजें देखनी पड़ेंगी, हाँ कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने पड़ेंगे, अगर आपने इसको हटा दिया तो फिर आपको पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। तो आज फिर से एक दफा जो है असद उमर ने कहा कि ये क्यों इसके ऊपर कमीशन नहीं बिठाया जा रहा, वो लेटर भी है, वो सारी चीजें भी है, और उस वक्त सब लोगों ने एग्री भी किया था कि फॉरन इंटरफेरेंस हुई थी, तो उसके ऊपर अब काम क्यों नहीं किया जा रहा। इसी तरह जो श्री मिजारी हैं वो कह रही हैं कि जी उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा था और अब भी हम पूछ रहे हैं कि ये US जो डिप्लोमैट्स हैं ये क्यों मिल रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, खास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो PTI का जो डिफेक्टेड जो MNA है नूर आलम खान, इससे अब ये क्यों रابطे बना के बैठे हुए हैं और क्यों इससे मिल रहे हैं, उसकी क्या वजह है, क्योंकि जाहिर है कि आपने गवर्नमेंट के ऊपर आप मिले ना, आप ये जो डिफेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ क्या मिलने का आपका है। तो बहरहाल जी आप देखेंगे क्या होता है। आज जनाब ब्लूमबर्ग की आज एक बड़ी मुझे हैरत हुई, ब्लूमबर्ग ने बड़ी एक एस्टोनिशिंग रिपोर्ट छापी है पाकिस्तान के ऊपर, और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो इनकी हेडलाइन है वो कहते हैं जी कॉन्फ्लिक्ट तो कोसों मील यूक्रेन में चल रहा है लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है। अच्छा, बहुत ही खूबसूरती से और सटल तरीके से ब्लूमबर्ग ने, बिकॉज इफ यू कैन रीड बिटवीन द लाइंस के वो क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ ही गए होंगे, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के एनर्जी के नीड्स बेतहाशा खराब हो गए हैं, मुल्क आधे से ज्यादा जो है वो उसमें अंधेरे में जाता जा रहा है, और ये बहुत एक्सपेंसिव जो है पाकिस्तान खरीद रहा है, इनकी जो एलएनजी की जो कॉस्ट है वो 1000 टाइम्स जो है ये ऊपर चली गई है, और पाकिस्तान ने अभी इस एनर्जी क्राइसिस को डील करने के लिए थोड़े दिन पहले जो एक शिपमेंट एलएनजी की ली थी वो 100 मिलियन यूएस डॉलर्स की थी, और अब इनको होले होले और लेनी पड़ेगी जिसकी के कॉस्ट जो है 5 बिलियन डॉलर्स को टच करेगी। तो ये इसमें पाकिस्तान जो है ये जो सारा क्राइसिस हुआ है रशिया और यूक्रेन का, इसमें ये डायरेक्टली जो है वो है अफेक्टेड है और इसको सॉल्व किया जा सकता था। अब इसके ऊपर आज फिर आंखें खड़ी हुई हैं दुनिया की कि जी कर किया जा सकता था, वो क्या था कि जो खान साहब रशिया गए थे उनसे चीप एनर्जी और ऑयल मांग रहे थे, ये चीजों की ना कीमतें बढ़ती ना ऑयल की ना बिजली की
बल्कि कम होती
जैसे कि इंडिया में हुई हैं कम होती, तो ये ब्लूमबर्ग की आज रिपोर्ट जो है फिर भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं ब्लूमबर्ग के ऊपर है। अच्छा जी, पाकिस्तान को मैंने आपको कहा ना रिवॉर्ड्स मिलने शुरू हो गए हैं, और आज बड़े दिनों से पाकिस्तान के जो नए एम्बेसडर थे सरदार मसूद खान साहब वो बड़े दिनों से वाशिंगटन में बैठे हुए थे लेकिन उनके साथ बाइडन साहब जो है मुलाकात नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप किसी नए मुल्क में जाते हैं एम्बेसडर बन के तो वहां का हेड ऑफ द स्टेट आपके वो पेपर्स लेते हैं ना, क्रेडेंशियल्स लेते हैं आपसे, तो ये बहुत दिनों से बैठे हुए थे, और आपको तो पता ही है कि बाइडन साहब ने तो जब प्रेसिडेंट अमेरिका के बने थे तो इमरान खान साहब को भी फोन नहीं किया था, लेकिन आज वो हमारे एम्बेसडर को भी मिले हैं।
अच्छा, वेरी
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आज बाइडन साहब
दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
हाँ हाँ प्यार हाँ। दिखा रहे हैं आप हैं जी, तो आज उन्होंने उनसे मिले और उनके जब क्रेडेंशियल्स लिए तो पाक एम्बेसी ने वाशिंगटन में कहा जी कि उन्होंने कहा है मसूद खान साहब को कि हम आपके साथ प्यार बनाए रखेंगे और पाकिस्तान और यूएस के टाइज जो उनको और मूव फॉरवर्ड करेंगे और हम ऐसे ही आपके साथ काम करेंगे। और आपको पता है ये कब से आके बैठे हुए हैं डीसी में, आपको मैं डेट बताऊंगा जो भाई March 25th से।
वाओ, इट्स ऑलमोस्ट थ्री मंथ्स
जी, मगर उस वक्त तो पनिश करना था ना पाकिस्तान को।
ओके okay.
जी जी समझ, मतलब आप कब बड़े होंगे आपको नहीं समझ आ रही है। हाँ जी ठीक है, तो ये हुआ जी, तो आज वो मिले हैं और उन्होंने कहा जी हमारा प्यार है पाकिस्तान के साथ बड़ा।
हाँ जी
ठीक ओके। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने आज पीटीआई की जो है एक उनके जो काउंसिल है पीटीआई के अनवर मंसूर खान उनके स्टांस को मान लिया है, और उन्होंने कहा जी कि ये जो फॉरन फंडिंग केस है इसका नाम चेंज करके प्रोहिबिटेड फंडिंग रखा जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ हाँ ये तो हम कर सकते हैं, नो बिग डील ये हम कर लेंगे, तो वो आज उन्होंने उनकी बात मान ली है। ठीक है जी, ये इन्होंने कहा था कि इलेक्शंस एक्ट 2017 के अंडर ये जो फंड्स बाहर से आते हैं इनको ये कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मान लेते हैं, मसला नहीं है, कोई पीटीआई के साथ कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, हम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, कल आपको हम बता रहे थे कुछ दिन पहले कि मुशर्रफ साहब की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो कल नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दे दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिल में कोई मुशर्रफ साहब के लिए बुराई नहीं है, अगर वो बहुत बीमार है और वो आना चाहते हैं मुल्क में तो वो आ सकते हैं। अच्छा, अब ये जब बयान आया तो बाकी ऑपोजिशन भड़क गई। पीपीपी के सेनेटर वैसे यूसुफ रजा गिलानी जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रहे हैं, वो कहते हैं जी हाँ ठीक है, उनको ना किसी ने जाने से रोक सके थे ना उनको आने से हम रोक सकते हैं, तो आने दो, बहरहाल हमारा तो कोई उनके साथ झगड़ा जो है एज सच नहीं है। लेकिन जो जमात इस्लामी है उसने बड़ा हिट किया, उसने कहा जी कि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को आप विक्टिम बनाते हैं, 10 साल मुशर्रफ साहब ब्लैक एंड व्हाइट के जो है वो करते रहे हैं, मतलब स्याह और सफेद के मालिक रहे हैं वो, फिर इन्होंने 2 दफा कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा, फिर इन्होंने जुडिशरी का मर्डर किया, फिर पिशावर हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ क्या क्या कुछ कहा, फिर भी ये बाहर चले गए मुल्क से, तो ये क्या तमाशा मुल्क के अंदर चल रहा है, ये क्यों इनको आप आने दे रहे हैं, और अगर आने दे रहे हैं तो इनको सजा क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन कल बाबर इफ्तखार साहब ने DGISI ने कहा था हम चाहते हैं कि उनकी हालत बहुत खराब है वो इधर आए, तो उसके ऊपर आज फिर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हमें सोचना चाहिए वो पाकिस्तानी और कोई भी पाकिस्तानी कभी भी पाकिस्तान आ सकता है।
ठीक है,
तो नवाज शरीफ को नहीं वो कह रहे हैं तुम भी आ जाओ, मतलब अच्छा पहले एग्जांपल सेट कर रहे हैं, अच्छा अच्छा इशारा कर रहे हैं, ओके ओके चलो ठीक। अच्छा जी, करण जौहर साहब का एक रीसेंट इंटरव्यू आया है और उसमें उन्होंने लोगों ने कहा जी कि अच्छा ठीक है आपने सरोगेसी से दो बच्चे तो ले लिए लेकिन आपने शादी नहीं की, क्यों किया? तो आज उन्होंने बड़ा रिग्रेट किया है, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं बड़ा रिग्रेट करता हूं, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर देखता रहा, थैंक गॉड के मेरे दो बच्चे हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये काम मुझे 5 साल पहले कर लेना चाहिए था, बट आई पुट माय पर्सनल लाइफ ऑन द बैक सीट एंड आई पुट माय प्रोफेशनल लाइफ इन फ्रंट। तो आज इन्होंने रिग्रेट किया कि नहीं जिंदगी में कोई साथी होना चाहिए, आई शुड हैव फाउंड अ लाइफ पार्टनर, इन्होंने ऐसे कहा। एंड जाओ जनाब स्क्विड गेम्स, मजे भाई आपने देखी है स्क्विड गेम्स? हैं नहीं देखी आपने? ओह माय गॉड क्या किया आपने, आपने मिस किया, आप देखें जरूर। अच्छा जी स्क्विड गेम्स जो है अब नेटफ्लिक्स जो है वो कह रहा है कि ये तो ड्रामा था ना, फिल्म थी स्क्विड गेम्स राइट, वो सीरीज था, अब वो कह रहे हैं कि अब हम रियल करेंगे स्क्विड गेम। नहीं उन्होंने अनाउंस किया, आज अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि 456 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हैव बीन इनवाइटेड बाय नेटफ्लिक्स और उन्होंने कहा जी जो गेम है गेम की प्राइस 4.56 मिलियन यूएस डॉलर्स है, लेकिन इसके अंदर लोगों ने कहा है और सारे जो है कंटेस्टेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग होने चाहिए, लेकिन लोगों ने उनसे कहा है जी कि क्या आप उनको जान से मारोगे उनको? तो ये इसका जवाब अभी उन्होंने नहीं दिया, जान से नहीं मारेंगे लेकिन गेम से निकालते जाएंगे। वो कह रहे हैं जो भी कोई पार्टिसिपेंट आएगा उसको एक तो अंग्रेजी आनी चाहिए और उसकी एज जो है 21 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। एंड जनाब ये क्रिकेट के अंदर तो अल्लाह नजरे बद से बताए, पाकिस्तानियों ने धमाल मचाई हुई है, चाहे ODI है, चाहे T20 है, चाहे जो है वो टेस्ट है, तो जनाब ये सारी रैंकिंग्स आ जाइए असल में ICC की, और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। अब दोनों ICC है ना मोहित भाई, कभी आप जैसा कोई मासूम जो है वो कंफ्यूज हो सकता है ना, तो हमने कहा एक्सप्लेन कर दें हैं।
अच्छी बात,
कोई जी इन मासूम हमारे क्रिकेटर्स पे कोई जो है क्रिमिनल कोर्ट नहीं बैठी हुई। अच्छा बड़ा प्यारा है उनका। अच्छा जनाब ODI के अंदर जनाब रैंकिंग्स जो हैं वो ऊपर इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं ये सारे इनकी रैंकिंग्स ऊपर चली गई हैं। इमामुल हक ने जो अभी 199 रन्स बनाए थे ODI में वेस्ट इंडीज के पास, जिसमें की वजह से पाकिस्तान 3-0 से जीती भी थी, और भी जो बाकियों ने भी इन तीनों ने दोनों ने भी जो किया मोहम्मद रिजवान और बाबर ने, उसकी वजह से जनाब अब जो है ये आगे आगे चले गए हैं। तो इमाम जो है ये इमामुल हक ये अब कोहली से भी आगे चले गए हैं और 811 इनके पॉइंट्स जो हैं कोहली के उससे 4 पॉइंट इनके अब ज्यादा हैं, यानी कि इनके 815 पॉइंट्स हो गए हैं। बाबर आजम जो है वो टॉप पे है 892 पॉइंट्स के साथ और फखर जमान जो है वो उसने शिखर धवन को 13th पोजीशन पे ज्वाइन किया है। ODI बॉलर्स में भी जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो अब 4th नंबर पे पहुंच गए हैं विद 827 पॉइंट्स और जो है शादाब खान हमारे 8 प्लेसेस से ऊपर आके 30th पोजीशन पे हैं, मोहम्मद नवाज 53rd पोजीशन पे, तो जो है वो अब प्लेसेस ऊपर चले गए हैं, तो अब ये आगे हैं 47th पोजीशन पे। T20 रैंकिंग्स में बाबर आजम इज नंबर 1 विद 818 पॉइंट्स, रिजवान नंबर 2 794 पॉइंट्स, फखर जमान ऑन 46th पोजीशन विद 490। T20 बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी ऑन 12th पोजीशन, शादाब 16th, हारिस रऊफ 29th। टेस्ट रैंकिंग्स में बाबर आजम 4th पोजीशन पे, अजहर अली और मोहम्मद रिजवान 18th और 19th पोजीशन पे, आबद अली 23rd, अब्दुल्ला शफीक 35th, फवाद खान 42nd, हसन अली 15th एंड मोहम्मद अब्बास 20th और यासिर शाह जो है 37th पोजीशन पे हैं। ठीक है जी, यानी ये बैट्समैन और बॉलर्स जो हैं मिले जुले हैं, तो ये हुए। अच्छा जी आज बड़ी जो है एलिगेशंस लगाए गए और दोनों तरफ से अब कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है इसका तो अंदाजा आप लगाएंगे। क्रिकेट की दुनिया से ये भी खबर है जी, तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आपको पता ही है बहुत कुछ हो रहा है। आज हुआ ये है कि उमर अकमल साहब एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है और इसको शेयर किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने, तो इन्होंने उनके शो में कहा कि जी मिकी आर्थर जो है उसने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया, जो इनका जो कोच था पाकिस्तान का वो एक्स कोच था, और बड़ी फाउल लैंग्वेज यूज करता था और मुझे बड़ा इंसल्ट करता था और मुझे कहता था तुम जाओ तुम क्लब क्रिकेट खेलो, तुम ये इधर खेलने के काबिल नहीं हो, और उसके अलावा जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने भी मेरा करियर जो है वो बड़ा खराब किया। अब जब ये बातें आई तो मिकी आर्थर तो भड़क गए, उन्होंने कहा यू नीड टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर है जी, और उन्होंने कहा ये सारा झूठ बोल रहा है और ये सारी बातें मैंने नहीं की हैं और ये सारे एलिगेशंस इसके झूठे हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट वर्ल्ड कप इसमें सेंसेशन बढ़ती जा रही है मजीद भाई, बहुत बढ़ती जा रही है जी। तो वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में अब होने लगा है बिटवीन नवंबर 21 टू दिसंबर 18, आपको पता ही है कि 27 डे टूर्नामेंट ये होएगा और 8 डिफरेंट स्टेडियम्स में। वो कतर छोटी सी जगह है, वो कितने स्टेडियम इन्होंने बना दिए हैं,
स्टेडियम
बस कतर में और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो ये जनाब 8 स्टेडियम्स में होएगा एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट फीफा विल बी कमिंग टू अ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। इसमें जो 32 टीम्स, ये आप जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको नजर आएगा कि कौन कौन किस किस ग्रुप में है। तो ये जो हैं, ये जो 32 टीम्स अब जो क्वालिफाई हुई हैं, ये हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कैमरून, कनाडा, कोस्टारिका, क्रोशिया, डेनमार्क, इक्वाडोर, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, घाना, ईरान, जापान, मैक्सिको, मोरक्को, कतर, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, केएसए यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सर्बिया, साउथ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, टूनिजिया, यूरोग्वे, यूएसए एंड वेल्स। तो जनाब ये सारे कंट्री जो हैं ये अब इसमें खेलेंगे
जी।
यस, खेड मचेगी फिर यहाँ पे,
खेड मचेगी।
हाँ तो हमें तो फिक्र नहीं थी ना, हम तो हमारा तो कनाडा पहले ही पहुंच गया हुआ था। जी
ये थी हमारी आज की न्यूज एंड बकिया की न्यूज, कल इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए फिर दोबारा पेश करेंगे।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Grill and Chick, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500, Grill and Chick.
गाड़ी घर या कमर्शियल जैसे कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस की मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522-302-2522।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
क्या बात है बेटे, बड़ी आवाज नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे रुक जाती है।
ओ बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, चार व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविट ड्राइव, इटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो,
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
फर्स्ट मोर्गे, सेकंड मोर्गे, या फिर हो पे लोन, सोचो ना बस, बिल्कुल भी होने मिलाओ फोन।
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाखदा होवे या काकदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्ट डील्स, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यूब, throughout Ontario. No appointment needed. Drive through facility, one stop shop. Up T Street location, exit 579 from Highway 401. In Napanee, quick truck loop. 519-622-0660. QuickTruckLube.com.
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینکرپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577
کوہتور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے خدا ہے
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM, वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
सब पे करम एक सा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ
तुझसे दुआ मांगता हूँ। WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.